अध्याय सातवां। वृंदावन छोटे बड़े चमत्कारों से भरा था। एक दोपहर जब मैं अकेला जंगल की पगडंडियों पर घूम रहा था, मेरे सामने एक गुस्सैल सांड आ गया। धूल का बादल उसके विशाल शरीर के इर्द गिर्द उड़ रहा था और उसके मुख से सफ़ेद झाग निकल रही थी। उसने क्रोध से मेरी ओर देखा और मुंह खोलकर ऐसे गरजा कि मैं कांप गया। धरती पर जोर से खुर पटकते हुए उसने मुझ पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो मेरे सामने आकर रुका और अपना सिर नीचे झुकाकर झटके से उसे ऊपर उठाया और अपने सींग मेरे पेट में दे मारे। मेरी सांसें अटक गईं। उसने मुझे ऊपर उछाल दिया और मैं उसके शरीर के ऊपर से उड़ता हुआ उसके पीछे धरती पर आ गिरा। फिर वो अधीरता से धरती को अपने खुरों से कुरेदने लगा और नाक से फुफकारते हुए पुनः हमला करने के लिए तैयार हो गया। धरती पर गिरे एवं पीड़ा से कराहते हुए मुझे लगा कि अब मृत्यु निश्चित है। तभी वहां अधेड़ अवस्था के एक पतले व्यक्ति आ पहुंचे। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े और नेहरू टोपी पहनी हुई थी। वे स्थानीय भाषा में कुछ चिल्लाए, जिसे सुनकर सांड ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप वहां से चला गया। मैंने चैन की सांस ली। अपना हाथ बढ़ाकर उस अपरिचित व्यक्ति ने मुझे उठाया। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। वो सांड बहुत गुस्से में था। राहत का अनुभव करते हुए मैंने अपने शरीर की जांच परख की। अचरज की बात तो ये थी कि मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी थी और मेरी पीड़ा भी गायब हो गई थी। जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, मैं चीख उठा। एक कांटा गहराई से मेरे पैर में घुस गया था और उसका दर्द मुझे बैल के सींग से भी अधिक कष्ट देने लगा। नीचे झुककर उसे निकालते समय मैंने सोचा कि शायद ये कृष्ण की ही कृपा थी कि बैल के सींग के बदले में एक छोटे कांटे की पीड़ा। फिर उनकी ओर मुड़ते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा जीवन बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। बाबा, मैंने नहीं बचाया। वे मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की है, मैं तो केवल उनका एक साधन था। उनकी वाणी भावनाओं से भर उठी। बदले में श्रीकृष्ण हमसे केवल प्रेम की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने मुझे पीछे घुमाया और घावों के लिए निरीक्षण करते हुए मेरे कपड़ों से मिट्टी झाड़ने लगे। तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। मैंने संक्षेप में अपनी स्थिति का वर्णन किया। फिर उन्होंने सूरज की ओर देखकर कहा, मुझे एक बैठक के लिए देरी हो रही है, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। हम इकट्ठे वन के रेतीले मार्ग से होकर जाने लगे। उन्होंने अपने सिर से टोपी उतारी और कहा, मैं तुम्हें एक विरले संत और विद्वान के घर लेकर जा रहा हूँ। सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते, किंतु वृंदावन के संत उनका बहुत आदर करते हैं। आप उन्हें संतों में संत कह सकते हैं। हम एक समतल शिला तक आए जो एक खुले नाले के ऊपर पुल का काम कर रही थी। 3 फुट चौड़े नाले में गर गर बहते गटर के काले एवं गाढ़े पानी में बुदबुदे उठ रहे थे। दुर्गंध से मेरा दम घुटने लगा और मैंने सावधानी से पुल को पार किया। तभी सुअरों के एक परिवार ने नाले में छलांग लगाई और कोलाहल मचाते हुए मस्ती करने लगे। सुड़पते और निगलते हुए उस सड़े हुए काले सुधारस का पान करने लगे। उनके चेहरों से मल टपक रहा था और वे आनंद से फुत्कार रहे थे। कुछ मिनटों पश्चात हमने एक उद्यान में प्रवेश किया। वहां चारों ओर हरियाली, सुगंधित पुष्प, भिनभिनाती मधुमक्खियां और चहचहाते पंछी थे। कुछ दूर चलकर हम एक आंगन में पहुंचे जहां एक छोटी कुटीर थी। कृपया अंदर आइए, उन सज्जन ने मेरा हाथ थाम कर कहा। भीतर लकड़ी के तख्ते पर एक साधु विराजमान थे। उनका चेहरा और सिर मुंडे हुए थे और उनके सिर के पीछे एक छोटी शिखा थी जो भगवान के प्रति उनके सेवा भाव को दर्शाती थी। मुझे बताया गया कि उनकी अवस्था 80 से अधिक वर्ष की थी। एक मंद मुस्कान के साथ उन्होंने हाथ जोड़कर अपने माथे पर लगाए और सिर झुका दिया। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। ये थे विशाखा शरण बाबा। 5 अधेड़ साधु उनके चरणों पर बैठे उनके प्रत्येक शब्द को सुनने के लिए आतुर थे। विशाखा शरण बाबा मेरी ओर देखकर बोलने लगे। मेरे मार्गदर्शक ने, जिन्हें सभी पंडित जी कहते थे, उनकी हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यदि कोई व्यक्ति उस प्रकार से भगवान के प्रेम की याचना करता है जिस प्रकार से भूखा व्यक्ति भोजन की, तभी भगवान उसे प्रेम की दुर्लभ निधि प्रदान करते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कृपया प्रसाद के लिए आइए। उनके सत्संग से प्राप्त शांति मुझे प्रति दोपहर लगभग 4 बजे उन रेतीले मार्गों पर खींच लाती। मेरे आने पर विशाखा शरण बाबा स्वयं अपने हाथों से मुझे बैठने के लिए चटाई और खाने के लिए रोटी और गुड़ देते। ये वृंदावन के सबसे गरीब लोगों का भोजन था। उनके अनुयायी उनका बहुत आदर करते थे और उनके भोजन की व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु बाबाजी को वो स्वीकार नहीं था। नम्रतावश इस अधेड़ अवस्था में भी वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते। जो भी उन्हें मिलता, जो अक्सर सूखी रोटी और गुड़ ही होता था, वे आनंद से उसे मेरे साथ बांटते। भले ही उम्र में वे मुझसे 4 गुने बड़े थे और संतों में संत एवं एक विख्यात विद्वान थे, वे मुझ पर ऐसी करुणा दिखाते कि मैं अवाक रह जाता। विशाखा शरण बाबा 1918 में एक साधु बनकर वृंदावन आए और शेष जीवन यहीं रहे। उनके अतीत के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके विषय में कभी कुछ बताया ही नहीं। हिमालय में मैं ऐसे साधुओं के बीच में रहा था जो कठोर वैराग्य का पालन करते थे, और मैंने वहां अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियों के प्रदर्शन को भी देखा था। विशाखा शरण बाबा न तो ऐसे चमत्कार दिखलाते और न ही अपने शरीर को उत्पीड़ित करते थे। वे केवल भगवान की प्रेममयी सेवा में लीन रहते। जब वे श्री राधा के प्रेम और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे तो वे एक अबोध बालक के समान बन जाते। इस बात से अनभिज्ञ कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में वे कितने बड़े चढ़े थे। नम्रतावश वे अपने भावातिरेकों को छिपा लेते और एक सामान्य व्यक्ति के समान सेवा करते। वो मेरे हृदय से एक ऐसे स्नेह को आकर्षित करते जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। एक बार मैंने उनसे पूछा, कृपया मुझे ये बताइए जो आपको लगता है कि मेरे लिए आवश्यक है। लकड़ी के तख्ते पर बैठे उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यानावस्था में चले गए। फिर उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो मेरी चिंताओं, प्रश्नों और श्रीकृष्ण को स्वीकार करने की लालसा से पूरी तरह संबंधित थे। पंडित जी आंखें बंद किए अनुवाद करते रहे और मैं सुनता रहा। भगवान श्रीकृष्ण का शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक है। उनका स्वरूप शाश्वत एवं ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। वैदिक शास्त्र और युगो युगों के साधु पारंपरिक रूप से एकमत होकर आध्यात्मिक जगत में श्रीकृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यद्यपि श्रीकृष्ण की सुंदरता भौतिक इंद्रियों द्वारा अवर्णनीय है, शास्त्र उसका केवल उतना वर्णन करते हैं जितना हम अपनी मानवीय क्षमता से समझ सकते हैं। वे समस्त सुंदरता के स्रोत हैं। उनका वर्ण मानसून के नए बादल के समान नीला है। उनके हथेलियों और तलबों को छोड़कर जो गुलाबी कमल के सदृश हैं, उनके नेत्र जो सर्वत्र देख सकते हैं, एक पूर्ण खिले कमल की पंखुड़ियों के आकार के हैं। उनकी नासिका तिल के फूल के समान कोमल है। उनके अधर बिंब फल के समान लालिमा युक्त और उनके दांत मोतियों की पंक्ति के समान हैं। उनके गाल और कपाल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। उनके कान जिनसे वे सब कुछ सुनते हैं रत्नजड़ित मकर कुंडलों से सुशोभित हैं। उनके घने केश चमचमाती काली रेशम के समान हैं और उनके चंद्र सदृश चेहरे से लहराकर नीचे आते हुए वे छोटे फूलों की माला रत्नों एवं मोरपंख से सुसज्जित रहते हैं। उनकी ग्रीवा शंख के समान सुडौल है और उनके सारे अंग नवनीत से भी अधिक कोमल हैं। फिर भी वे एक वज्र से अधिक कठोर प्रहार कर सकते हैं। वे अनंत और पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उनकी शक्तियों से समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत चलायमान है और वे अपना विस्तार कर समस्त हम सबके हृदयों में हमारे नित्य संगी और साक्षी के रूप में निवास करते हैं। कभी कभी वे एक कठोर पिता के समान भौतिक सृष्टि का निरीक्षण करते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च लोक में श्रीकृष्ण परम भोक्ता हैं। वे अपनी आनंद को अपनी विनोद भरी लीलाओं, हास्यजनक शब्दों और अपने नटखटपन से अन्यों के साथ बांटते हैं। जब वे अपने त्रिभंग रूप में खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं तो हमारे हृदयों को अपने सर्वाकर्षक प्रेम से सम्मोहित कर देते हैं। आनंद से भरे विशाखा शरण बाबा कहते गए और मैं मंत्रमुग्ध हो सुनता रहा। श्री राधा रानी भगवान की नित्य संगीनी हैं। उनके शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। वे सभी जीवों की परम करुणामयी माँ हैं और उनके सुंदर गुण श्रीकृष्ण के मन को भी हर लेते हैं, किंतु मैं स्वयं को उनका वर्णन आरंभ करने के लिए भी अयोग्य समझता हूँ। उनका प्रेम एक सर्वव्यापी सत्य है जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को असीमित आनंद से आप्लावित कर देता है। अब इस मनमोहक वर्णन को छोड़कर वे भगवान के सर्वाकर्षक साकार स्वरूप का विद्वत्तापूर्ण वर्णन करने लगे। ये मेरे पेचीदे पश्चिमी मन की विश्लेषण करने वाली मानसिकता के लिए एक उपयुक्त मरहम थी। कोई सोच सकता है कि भगवान का ऐसा वर्णन भगवान पर मानवीय गुणों को थोपने का प्रयत्न है, किंतु इससे विपरीत मानवों को कुछ अंशों में वे गुण प्रदान किए गए हैं जिनकी उत्पत्ति मूल रूप से भगवान में होती है। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, भगवान ने मानव की सृष्टि अपने रूपानुसार की है। भगवान की उनकी धारणा प्रतीकात्मक अथवा कोई रूपक कथा नहीं थी, अपितु वो एक ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई थी जो हमारी बुद्धि और इंद्रियों की समझ से कहीं परे थी। उनके अनुसार भगवान को समझने का एकमात्र मार्ग सच्ची भक्ति है। मैंने देखा कि यह साधु कितनी लगन से भगवान का नाम कीर्तन, विनम्रता से दूसरों की सेवा एवं अर्चा विग्रहों की पूजा करते थे, और धीरे धीरे मेरे मन में भी उनकी इस साधना के प्रति गहरी सराहना उत्पन्न होने लगी। एक दोपहर मैंने विशाखा शरण बाबा और अन्य साधुओं को लकड़ी के एक पुराने रेडियो के समीप बैठे देखा। स्टेशन लगाने के पश्चात पंडित जी ने समाचार का अनुवाद कर मुझे बताया, भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया है। उनके चेहरे पर दुख के बादल घिराए। भयानक युद्ध हो रहा है, बम गिर रहे हैं और हजारों सैनिक लड़ रहे हैं। कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। सरकार ने ब्लैकआउट घोषित कर दिया है और बिजली काट दी गई है जिससे हम रात्रि की बमबारी से बच सकें। उनका ध्यान पुनः समाचार की ओर गया। अमेरिका ने अपनी सभी नागरिकों को भारत छोड़ देने के लिए कहा है। मैं अब स्वयं को एक अमेरिकी नागरिक से अधिक एक भारतीय साधु समझने लगा था, इसलिए मुझे लगा नहीं कि ये समाचार मुझ पर भी लागू होता था। फिर भी युद्ध के समाचार से मेरे माता पिता की चिंताएं निश्चित ही बढ़ी होंगी। अपनी कुशलता का आश्वासन देने के लिए मैंने अपनी 21वें जन्मदिवस 7 दिसंबर 1971 को उन्हें एक पत्र लिखा। आदरणीय माँ और पिताजी, धरती पर चल रहे युद्ध मानव के मन में हो रहे संघर्षों की ही अभिव्यक्ति हैं। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं, उसी क्षण हम युद्धभूमि में प्रविष्ट हो जाते हैं। पहले वियतनाम और इसराइल में युद्ध था, अब भारत और पाकिस्तान के बीच। जब तक हम अपनी मन की वासनाओं के बंदी बने रहेंगे, तब तक हम इसी युद्धभूमि में पड़े रहेंगे। किंतु विश्वास रखिए, मैं सुरक्षित हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, रिचर्ड। एक ओर जहाँ वियतनाम युद्ध धरती के दूसरे छोर अमरीका में रह रहे मेरे मित्रों को प्रभावित कर रहा था, वही मैंने स्वयं को भारत में एक अन्य युद्धभूमि में पाया। एक और युद्ध क्यों? 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और भारत के दोनों ओर पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान बनाए गए थे। 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारत पर धावा बोल दिया, क्योंकि भारत पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान से स्वाधीनता के आंदोलन को सहयोग दे रहा था। अब भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जोरों पर युद्ध आरंभ हो गया। जल, थल और नभ में हो रहे रक्तरंजित संग्राम में हजारों लोग मारे गए और उससे कहीं अधिक घायल हुए। 14 दिन पश्चात पश्चिमी पाकिस्तान ने हार मान ली और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। जब लड़ाई चल रही थी, विशाखा शरण बाबा और वे वृद्ध साधु रेडियो के चारों ओर जमा होकर शाम के समाचार सुनते। जब वे खून खराबे के विषय में सुनते, उनकी आंखों में करुणा के आंसू उमड़ आते। फिर वे रेडियो बंद करके भगवान की चर्चा में मग्न हो जाते और शीघ्र ही आनंद से उल्लसित हो उठते। एक ही समय में वह जन्म मृत्यु से परे आध्यात्मिक आनंद में तल्लीन हो जाते और साथ ही साथ अपने चारों ओर घट रही मानवीय पीड़ाओं के प्रति वेदना का अनुभव भी करते। विशाखा शरण बाबा और उनके अनुयायी मुझे जीवन में संतुलन की शिक्षा सिखा रहे थे। इस कला के लिए परिपक्वता और अनुभव की आवश्यकता है। उनसे मैंने ये सीखा कि भौतिक स्तर पर इस संसार की समस्याओं तथा लोगों के दुखों के प्रति संवेदनशील होने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर दे। इसके विपरीत मैंने पाया कि कैसे भगवान से प्रेम करने मात्र से व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से एक आदर्श मानव के सभी गुण जागृत हो जाते हैं और उसके हृदय में सभी के प्रति करुणा आ जाती है। यहाँ पर सातवां अध्याय समाप्त होता है।